इसके बाद एक वाक्या है जिसमें आज आपके मेरे लिए आज की पर्सनालिटी हावील भी है। थोड़ा सा इस वाक्य को समझ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। दुनिया जब शुरू हुई तो हर चीज नई नई थी। दुनिया में ना कोई कत्ल हुआ, ना मारा गया, ना मरा। दो बेटे थे आदम अलैहिस्सलाम के, कहते हैं कि ये उनके सुलभी बेटे थे। वैसे तो हम सब भी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, लेकिन ये दो बेटे थे, एक का नाम काबिल था और एक का हाबिल था। दोनों ने किसी बात पर कोई कुर्बानी करना चाहिए। उस दौर का रिवाज क्या होता था कि जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी दुनिया में पता चल जाता था, और जिसकी नहीं होती थी उसकी पड़ी रहती थी। काबिल जो था उसने बेकार सी चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान की, हाबील ने बहुत अच्छी चीज़ कुर्बान की। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया, बजाय इसके कि काबिल ये सोचता कि मेरे भाई की चीज़ कबूल हो गई, मेरी नहीं हुई तो मेरे में क्या कमी है, उसको दूर कर लूँ। लेकिन शैतान ने उसके दिल में हसद डाल दिया। उसने काबिल के बारे में ये सोच लिया कि बस ये मेरे रास्ते का रोड़ है, ये मुझसे बेहतर है, और ऐसा कुछ लड़ाई में पत्थर मारा कि हाबील जो थे उसकी तरफ वो आगे बढ़ने लगा। हाबील ने जब देखा कि ये मेरे पे ज्यादती कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसने बहुत ही प्यारे इखलाक के साथ ये कहा कि देखो, तुम अगर मुझे मारोगे, मेरे पे ज्यादती करोगे, लेकिन मैं तुम पे ज्यादती नहीं करूंगा। इसी सारी कोशिश के दौरान काबिल से हाबील का कत्ल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पहला कत्ल था इस जमीन पे। उसके बाद अब जो भी कत्ल दुनिया में हो रहा है, हर कत्ल का गुनाह काबिल को भी जा रहा है। बड़ी अहम बात है, जब किसी गुनाह का दरवाजा खोलेंगे ना, तो उस दरवाजे से बाद में जितने भी लोग गुजरेंगे उस पे पहले शख्स का गुनाह होगा। अब जब काबिल से कत्ल हुआ, अब उसको पता ही नहीं है, अकल इतनी थी नहीं, समझ नहीं थी, अब इस लाश का क्या करूं। अल्लाह ने एक परिंदे को भेजा, दो कौवे आपस में लड़े, उसमें से एक मर गया, दूसरे ने जमीन में मिट्टी में अपनी चोंच से कुछ खोदा और उसको दफन कर दिया। ये मंजर देखकर फिर काबिल को भी समझ आया, उसने भी हाबिल के साथ यही किया। असल में यहां से अगली आयतों में आप पढ़ेंगे बनी इसराइल के कत्लो गारत गरी के किस्से हैं, कि ये पहला कत्ल तब से शुरू हुआ और आज तक देखिए कि ये कत्लो गारत गरी का सिलसिला शुरू है। लेकिन जो इसमें बात मेरे आपके लिए एज अ रोल मॉडल है, वो क्या है कि हाबिल ने कैसे किरदार अपना अदा किया, आइए इसको देखते हैं, और फिर इसके बाद इस आयत पर थोड़ा सा गौर भी करेंगे। और इसमें बहुत खूबसूरत सबक भी है आपके मेरे लिए इस वाक्य में। वतलु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक, और जरा इन्हें आदम के दो बेटों का किस्सा भी बेकमोकास्त यानी कमी बेशी किए बगैर सुना दो। जब इन दोनों ने कुर्बानी की तो इनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की ना की गई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। इसने जवाब दिया, अल्लाह तो मुत्तकियों की नजरें ही कबूल करता है। इसको हाईलाइट करें, पहले पारे से हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। असल चीज काबिलियत नहीं है, कबूलियत है। यहाँ कबूलियत की एक शर्त है और वो तकवा है। आप ईद उल अधा पे बकरा कुर्बान करें, आप सदका दें, आप दीन की खिदमत करें, आप सदका दें, तकवा की शर्त के साथ ये कबूल होगा। तो अगर आप चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि हमारी चीजें कबूल हों, तो उसके लिए अल्लाह ताला से तकवा मांगने की जरूरत है। फिर अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। यहाँ देखिए ये किरदार है, पारे के शुरू में क्या था, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू इल्ला मन ज़ुलिम। इसी तरह इस वाक्य को हमने आज एज अ रोल मॉडल क्यों बनाना है, कोई आप पे मुझ पे ज्यादती करे, मैंने आगे से हाथ नहीं उठाना। अगर आज के इस पारे से आप और मैं ये मेन थीम लेकर जाएं, आप ढूंढेंगे कौन आप पे ज्यादती करे और आप उसको माफ करें। आप देखेंगे जिंदगी में सुकून और इत्मीनान आएगा। ये जो आप कहते हैं ना टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से, ये दुरुस्त नहीं है। अंदर बुगज भरा होता है ना, जुबान से भी जहर ही आता है। बस अंदर बारूद है तो खोलेंगे तो धमाका ही होगा ना। तो हमेशा इजी गोइंग रहिए, लोगों को माफ कीजिए, लोगों के मामले में नरमी का ख्याल रखें। ये बहुत ज्यादा सख्त दिली और कठोरपन होता है कि आप दूसरों को हमेशा बुरा भला कहते रहे और खुद को पाक समझते रहे। और इधर से ये भी पता चलता है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, यानी जितना अल्लाह का डर ज्यादा होगा उतना आप अपने बदले लेने से बाज आएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोस्त ही बन कर रहे। जालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। आखिरकार इसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल इसके लिए आसान कर दिया और वो इसे मार कर इन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि इसे बताए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला, अफसोस मुझ पर, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। यहां भी एक जुमला नोट कीजिए, भाई के जैसा होने की ख्वाहिश नहीं कर रहा कि जिसने इसकी बुराई के जवाब को बुराई से नहीं टाला, बल्कि इस पे शर्मिंदा है कि मैं अब उसकी लाश को छुपा नहीं सका। ये भी एक अहम बात है सोचने की। इसी वजह से बनी इसराइल पर हमने ये फरमान लिख दिया कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या जमीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। ये तौरात की आयत है। जैसे इस्लाम में कत्ल जुल्म है या कत्ल जुर्म है, इसी तरह पिछली कौमों में भी ये कत्ल हराम था। और जिसने किसी को जिंदगी बख्शी, इसने गोया तमाम इंसानों को जिंदगी बख्श दी। एक जिंदगी होती है जाहरी जिंदगी, कोई मरने लगा आपने उसको बचा लिया, सड़क पार करते करते किसी को धक्का दे दिया, कोई डूब रहा था बचा लिया, या डॉक्टर्स हजरात आज के दौर में आप देखिए अगर लोगों की दवा दारू के साथ जान बचाते हैं, ये बहुत बड़ी ऑनर है। लेकिन एक और जिंदगी भी तो होती है ना, रूहानी जिंदगी। ये कब लोगों को मिलती है? जब उनकी जिंदगी में किताब खुलती है। तो दुआ कीजिए कि हम दूसरे लोगों की जिंदगियों को बचा सकें, जिस्मानी भी और रूहानी भी। मगर इनका हाल ये है कि हमारे रसूल पैर दर पे इनके पास खुली खुली हिदायत लेकर आए, फिर भी इनमें बकसरत लोग जमीन में ज्यादतियां करने वाले हैं। अच्छा, ये डकैती की सजा है। सिर्फ मैं नाम इसलिए बोलती हूँ कि कुछ तो याद रह जाएगा ना, डकैती कह लीजिए या मुहारबा, यानी चोरी की सजा आगे आएगी। लेकिन कोई जैसे आप देखिए कि अल्लाह तआला हिदायत दे, बहुत बड़े बड़े डाके पड़ जाते हैं, तो अगर इस्लाम आ जाए तो ऐसी सजाएं मिलेंगी कि उसके बाद कोई इसकी जुरत नहीं कर सकेगा। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से लड़ते हैं और जमीन में इसलिए तगो दो करते फिरते हैं कि फसाद बर्पा करें, इनकी सजा यह है कि कत्ल किए जाएं या सूली चढ़ाए जाएं या इनके हाथ और पांव मुखालिफ से मतों से काट दिए जाएं या वो जिला वतन कर दिए जाएं। ये जिल्लत और रसवाई तो इनके लिए दुनिया में है और आखिरत में इनके लिए इससे बड़ी सजा है। हाँ, मगर जो लोग तौबा कर लें, तौबा को देखिए बार बार आ रहा है, तौबा तौबा यानी पिछली जिंदगी के गुनाहों की माफी। कब तौबा करें? कबल इसके कि तुम इन पर काबू पाओ, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। बड़े से बड़े गुनाह करके भी अल्लाह की जनाब में बंदा आ जाए, अल्लाह ताला माफ कर देता है। इसीलिए बड़ी प्यारी आयत, आयत 35, इसको हाईलाइट कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। पूछो कितनी दफा आया तकवा का लफ्ज, कोई है जो नोट कर रहा है? 7 दफा, 4 दफा, चले 9 दफा, चले देखते हैं इन पे क्या स्कोर आता है। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। तो फिर हम भी थोड़ा सा डरने की कोशिश करें। आप देखिए, कुरान पढ़ते हुए दिल ना डरे ना तो खौफजदा हो जाना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे सूरत अनफाल में कि नमल मोमिनून अल्लज़ीना, मोमिन होते ही वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके दिल डर जाते हैं। वजिलत कुलूबुहुम, तो कुरान पढ़ते वक्त दिल कभी गाफिल ना होने दें और महसूस कराएं कि मैं इस वक्त अल्लाह का कलाम पढ़ रही हूँ, मेरे दिल की क्या कैफियत है। और इसकी जनाब में बारयाबी का जरिया हासिल करो, इसकी राह में जिदोजहद करो, शायद कि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। यहाँ देखिए, वक्त तो इलैहिल वसीला वजाहिदु फी सबीली का। हम किस चीज़ को वसीला बना सकते हैं? हम अपने नेक अमाल को वसीला बना सकते हैं, हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, हम नेकियों के जरिए अल्लाह तआला का रास्ता हासिल कर सकते हैं। हमारे दीन में कहीं भी बिल्कुल फारिग बैठना या अपने आप को बेकार करना नहीं है। तो जिंदगी में अल्लाह का कुर्ब हासिल करना एक इंसान की जिंदगी का मकसद होना चाहिए। खूब जान लो कि जिन लोगों ने कुफर का रवैया इख्तियार किया है, अगर इनके कब्जे में सारी जमीन की दौलत हो और उतनी ही और इसके साथ, और वो चाहें कि इसे फिदिये में देकर रोज़े क़यामत के अज़ाब से बच जाएं, तब भी वो इनसे कबूल ना की जाएगी और इन्हें दर्दनाक सजा मिलकर रहेगी। वो चाहेंगे कि दोज़ख़ की आग से निकल भागें। मैं जब इस आयत को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी शख्स के पीछे आग लगी हुई है और वो आगे भाग रहा है, और भागने की वजह से आग और भड़क रही है, मगर वो निकल ना सकेंगे और इन्हें कायम रहने वाला अजाब दिया जाएगा। देखिए, क्या कोई इंसान ये ख्वाहिश कर सकता है कि कोई आग में जाए फिर मैं उसको वहां से निकालूं, फिर बचाऊं, फिर मुझे रिवॉर्ड मिले कि मैंने फलां को जलने से बचा दिया? क्या पहले ही उस रास्ते को बंद नहीं कर देना चाहिए जो आग की तरफ जा रहा है? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ऐसी कोशिशें करने की तौफीक दे कि हम अपना और दूसरों का जहन्नुम में गिरना इससे रोक सके। अब चोर की सजा। वस्सारिक वस्सारिकत फक्तौ अयदियहुमा, और चोर ख्वाह औरत हो या मर्द, दोनों के हाथ काट दो, ये इनकी कमाई का बदला है और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा। अल्लाह की कुदरत सब पर गालिब है और वो दानाओं बीना है। फिर जो जुल्म करने के बाद फिर तौबा करे और अपनी इसलाह कर ले तो अल्लाह की नजर इनायत फिर इस पर मायल हो जाएगी। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह आसमान और जमीन की सल्तनत का मालिक है, जिसे चाहे सजा दे, जिसे चाहे माफ करे, वो हर चीज का इख्तियार रखता है। एक स्ट्रेच में शायद आपको लगा हो कि चोरी की इतनी बड़ी सजा क्यों है कि हाथ काट दो, तो वो हाथ ईमान वाला ही नहीं रहता जो किसी के माल पे पड़े। याद रखिए कि इस्लाम ने हुर्मते जान, हुर्मते इज्जत, हुर्मते माल रखी है, यानी जान, माल और इज्जत दूसरों की महफूज होनी चाहिए। अगर किसी एक शख्स ने आपकी कोई चीज चोरी की और उसको डर है कि मेरा हाथ काटा जाएगा, अगली दफा कोई नहीं करेगा। और अगर किसी सोसाइटी में एक दो बंदा हाथ कटा हुआ फिरे, बाकियों को जरूरत नहीं होगी। आज आप देखिए सऊदी अरब में सोने की दुकानें खुली छोड़कर लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वजह क्या है? उनको डर है। इसके बरक्स आप देखिए कई ऐसे कामयाब मुल्क हैं कि वो चोरों के हाथों बेबस है, वो अब रिपोर्ट भी नहीं लेते, वो कहते हैं क्या करें हमसे नहीं पकड़े जाते। तो याद रखिए कानून का खौफ नहीं चोरियां रुकाएगा, अल्लाह का खौफ और सजाओं का खौफ जो है वो इंसान को सीधा कर देता है। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र। आप इस आयत को सुनते हैं अक्सर आपने भी दिल की कैफियत पूछे कि अल्लाह के नबी तो रंजीदा होते थे, क्या हम भी इस बात पे रंज खाते हैं क्या? ऐ पैगंबर, तुम्हारे लिए बायस रंज ना हो वो लोग जो कुफर की राह में बड़ी तेज गामी दिखा रहे हैं, यानी कुफर में बढ़ता देख कर लोगों को नबी सल्लम का दिल दुखता, क्या हमारा दुखता? दुआ किया करें, कभी राह चलते किसी गैर मुस्लिम को देखे ना, उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इसके लिए सबब बना दे, अल्लाह इसको इस्लाम दे दे। हाँ, इनमें से वो हो जो मुंह से कहते हैं हम ईमान लाए मगर दिल इनके ईमान नहीं लाए, या इनमें से वो हो जो यहूदी हैं जिनका हाल ये है कि झूठ के लिए कान लगाते हैं और दूसरे लोगों की खातिर जो तुम्हारे पास कभी नहीं आए सुन गुन लिए फिरते हैं। किताबुल्लाह के अल्फाज को इनके सही जगह मुतय्यन होने के बावजूद असल मानी से फेरते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर तुम्हें ये हुक्म दिया जाए तो मानो, नहीं तो ना मानो। जिसे अल्लाह ही ने फितने में डालने का इरादा कर लिया हो, इसको अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या पता चला कि अल्लाह सुब्हान तआला की किताब में कमी बेशी करने वाले कभी भी अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक ना करना चाहा, इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखरत में सख्त सजा। ये झूठ सुनने वाले और हराम के माल खाने वाले हैं। देखिए अल्लाह को कितना गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर कि इनका तस्करा भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बड़े नापसंदीदा लोग हैं। झूठ सुनने वाले और हराम के मल खाने वाले, लिहाजा अगर ये तुम्हारे पास अपने मुकदमात लेकर आए तो तुम्हें इख्तियार दिया जाता है कि चाहो तो इनके फैसले कर दो वरना इनकार कर दो, तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फैसला करो तो फिर ठीक ठीक इंसाफ के साथ फैसला करो, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला आज हमें भी इसी पे अमल की तौफीक दे। और ये कैसे तुम्हें हकम बनाते हैं जबकि इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है और फिर ये इससे मुंह मोड़ रहे हैं? असल बात यह है कि ये लोग ईमान ही नहीं रखते। ये वही कहानी है जो पिछले पारे में थी कि बास ज्यूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला करवाना ज्यादा पसंद करते थे अपनी अदालतों की निस्बत। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म नहीं करेंगे। तो दो के बीच में जब मामला होता ना, तो जो हक पे होता वो कहता नबी सल्लम के पास चलते हैं, क्योंकि उसको ये पता था कि ना तो आप रिश्वत लेंगे, ना आप किसी का साइड लेंगे और इंसाफ करेंगे। अगर आज हम मुसलमानों की ये रेपुटेशन बन जाए तो आप देखें कैसे इस्लाम की तरफ लोग भागे भागे आए। फिर तौरात की कुछ खूबियां आप देखिए, पिछली किताबों में अल्लाह ताला ने अपने वक्त में बहुत खैर रखी थी, उसी का तذکرہ। इन्ना अनज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर, हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत और रोशनी थी। सारे नबी जो मुस्लिम थे इसी के मुताबिक इन यहूदियों के मामलात का फैसला करते थे और इसी तरह रब्बानी उलमा और अहबार भी इसी पर फैसले का मदार रखते थे, क्योंकि इन्हें किताबुल्लाह की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया गया था और वो इस पर गवाह थे। पस ग्रोहे तुम लोगों से ना डरो बल्कि मुझसे डरो। अल्लाह का खौफ एक नेमत है, ये मांगने वाली चीज है। चलिए आज इफ्तारी के वक्त दुआ करेंगे, अल्लाह मुझे अपना खौफ दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खशयतक मा तहूलु बिही बैनी व बैना मासियती। अल्लाह मुझे अपना वो खौफ दे दे जो मेरे और मेरे गुनाहों के बीच में हायल हो जाए। मांगेंगे ये दुआ इंशाअल्लाह ताला। और मेरी आयात को जरा जरा से मुआवजे लेकर बेचना छोड़ दो, यानी किताब के अहकाम को ना बदलो। जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला ना करें वही काफिर हैं। अब यहाँ मुसलसल 3 आयतों में इस बात पे जोर है कि अल्लाह की किताब चूमने चाटने पढ़ने के लिए नहीं नाफिज करने के लिए आती है। तीनों किताबें तौरात इंजील और कुरान, अगर आप बाद में इनकी तफसीर सुनना चाहें तो बहुत खूबसूरत आयात है इस नाते से कि जब कोई मुल्क इस्लाम के नाम पे बने तो वहाँ इस्लाम का निज़ाम नाफिज होना चाहिए, वरना अल्लाह ताला की पकड़ आती है। अल्लाह ताला हमें इससे बचा कर रखे। तौरात में हमने यहूद पर यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, यानी जब कोई किसी को मारे तो बदले में वो खुद मरेगा, किसी दूसरे को नहीं मारा जाएगा। आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और तमाम जख्मों के लिए बराबर का बदला। फिर जो कसास का सदका कर दे तो इसके लिए कफारा है। और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला न करें वही जालिम है। पहले क्या कहा? काफिर, अब कहा जालिम। तो किताबों को नाफिज करना है, अमल में इंशाल्लाह लाना इनको। फिर हमने इन पैगंबरों के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा। तौरात में से जो कुछ उसके सामने मौजूद था वो उसकी तस्दीक करने वाला था, और हमने इसको इंजील अता की जिसमें रहनुमाई और रोशनी थी, और वो भी तौरात में से जो कुछ उस वक्त मौजूद था इसकी तस्दीक करने वाली थी, और खुदा तर्स लोगों के लिए सरासर हिदायत और नसीहत थी। हमारा हुक्म था कि अहले इंजील इस कानून के मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ने इसमें नाजिल किया है। जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला न करें वही फासिक है। पहले क्या? काफिर। फिर क्या? जालिम। यहाँ फासिक है। आप देखिए कि ये आयात जो हैं इंसान को जरूर सोचने पे माइल करती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इस मुल्क का लॉ है ना, अब ये लॉ तो हो, किताबों में बंद हो, हर फ्रेंच शख्स सुबह उठ के उस लॉ का एक पेज पढ़ ले, कुछ उसके पेजेस की तस्वीरें लेकर गाड़ियों में लगा ले, क्या गवर्नमेंट खुश होगी उस बंदे से? क्या उस लॉ का मकसद है? चलिए कोई स्कूल है, आपका इदारा, बहुत उसके लॉज है, बाई लॉज है, सब है, और सारे फाइलों में लगा के रखे हुए हैं। अमली तौर पर वहां कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। आप किसी काम पे कोई नॉमिनेट करते हैं किसी को, मतलब आप देखिए ये काम हम कर रहे हैं, आपके साथ कुछ साथी यहाँ मौजूद हैं, अब उनको ड्यूटीज मिली, उनके लिए कुछ जगह रखी गई, कुछ काम के, ये सब लिखा हुआ कागजों में पड़ा रहे, अमली तौर पे हर बंदा अपनी मर्जियां करे तो मुझे बताइए उसका कोई फायदा हुआ? आपने वो सब जाया कर दिया। बिल्कुल इस बात को आप कुरान पे लाइए। हम कुरान पढ़ते हैं, हमारे घरों में कुरान पाक है, समझते कितना है। आप पता है कि इस किताब को क्या नाम देते हैं गोरे? कहते हैं सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे कम समझी जाने वाली किताब कुरान है। बात सच है। राह चलते किसी मुसलमान को खड़ा करके कोई जरा 4 आयतों का तर्जुमा तो पूछ ले। ये बुनियादी चीज है जिसने आज हमारे वक्त में बरकत छीन ली। आज भी अगर टुडे जस्ट नाउ हम ये नियत करें कि मैंने अब अपनी अगली जिंदगी में इस किताब को समझना, चाहे मुझे साल लगे, 2 साल लगे, 4 लगे, मैंने कम से कम ये तो देखना है ये कहती क्या है। आप देखेंगे इसकी बरकत आप अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे, और मैं आपको दुआ दूंगी कि आप सीखें और अल्लाह आपकी जिंदगियों में बरकत दे, और आप अपने खुद मुंह से ये बात कह सके लोगों को कि जब से ये कुरान मेरी जिंदगी में आया है मेरी हर चीज में बरकत आ गई, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। अब दोनों किताबों की बात के बाद अब कुरान की बात है। वंजलना इलैकल किताब बिल हक, फिर नबी हमने आपकी तरफ ये किताब भेजी जो हक लेकर आई है, और अल किताब में से जो कुछ इसके आगे मौजूद है इसकी तस्दीक करने वाली और इसकी मुहाफिज और निगेबान है। कुरान के निगेबान, मुहैमिन कहते हैं मुर्गी का अपने परों के नीचे बच्चों को लेना, सिक्योरिटी है ना, हिफाजत है। पिछली किताबों के जो असल टेक्स्ट थे ना वो सब कुरान में है। आज आपको पता भी नहीं है हमने सूरत मायदा में बहुत सारी तौरात की आयतें पढ़ी हैं, अल्लाह ताला ने उनको इसमें प्रिजर्व कर दिया जब लोगों ने उन किताबों को बदला। असल किताब वो मौजूद है। हजरत उमर एक मौके पर तौरात का एक सफ़ा कहीं से ले आए और बड़े जोश से पढ़ के सुना रहे हैं, अल्लाह के नबी देखे कितनी अच्छी बातें लिखी हैं, पर आपका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। का उमर जिस मूसा पे ये किताब उतरी थी, अगर आज वो आ जाए और लोग उनके पीछे लग जाए तो भी गुमराह होंगे। मुराद कहते कि कुरान आ गया है, अब इसके बाद किसी किताब का कोई दौर नहीं है। सोचने की बात है कि अल्लाह की नाजिल करदा कोई किताब अब कुरान के आने के बाद वैलिड नहीं रही, तो इंसानों की लिखी हुई बातें उनके फतावा की क्या हैसियत है अगर वो किसी सही हदीस या किसी आयत से टकराएं। तो लिहाजा इस किताब की खूबियां देखिएगा, मुहैमिन, लिहाजा तुम अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक लोगों के मामलात का फैसला करो, और जो हक तुम्हारे पास आया है इससे मुंह मोड़ कर उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। 70 साल से ये आयत हम मुसलमानों के लिए चैलेंज है कि इस किताब को नाफिज करो अमली तौर पे। चले अपने प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज कर दे, अल्लाह इस किताब को कानून का हिस्सा बना दे, अल्लाह हमारी अदालतों में इंसाफ हो इस किताब के मुताबिक, अल्लाह फिर हम वो बरकतें भी देखें जो इस किताब के नफूज से होती हैं। आपको देखिए सऊदी अरब में किसी हद तक निफास है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले सऊदी अरब एक गरीब मुल्क था। आज आप पढ़ के हिस्ट्री देखिए 100 साल पीछे चले जाएं ऑलमोस्ट, सऊदी अरब में गुर्बत थी, कमी थी। अल्लाह ने एक ऐसा हुक्मरान उनका भेजा, उसने कहा कि मैं शरीयत नाफिज करूंगा। बहुत इख्तलाफात के बावजूद जब नाफिज हुई, जिधर शरीयत नाफिज हुई उसके बाद सऊदी अरब से तेल के कुएं निकलने शुरू हो गए। आज भी कहते हैं इतना सोना चांदी है कि उन्होंने उसको बंद किया हुआ है कि हमें जरूरत ही नहीं है। कहाँ से ये बरकतें आई? इस किताब की बरकतें। आज आप पाकिस्तान में इसको नाफिज करें, आपकी जमीनें सोना उगलेंगी। आज भी लोग कहते हैं पाकिस्तान में डायमंड्स के बड़े बड़े पहाड़ छुपे हुए हैं, ये सिर्फ आपने मैंने निकलवाने हैं। कब? जब इस्लाम नाफिज होगा। उसने किताब उतारी, उसने जमीनों में सोना चांदी रखा, ये हम धक्के खा रहे हैं सिर्फ इस किताब की दूरी की वजह से। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दें। इसीलिए फरमाया कि इससे मुंह मोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना करो, पीछे ख्वाहिश ही रह जाती है ना। कौन नहीं नाफिज होने देता जो मनमानी करना चाहता है? रूल्स कौन नहीं फॉलो करता? जो चाहते मेरी मर्जी, मैं कोई पाबंदी नहीं सह सकता, सॉरी मुझसे ना कोई उम्मीद रखे, नहीं 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 मैं नहीं करती, नहीं सब कर रहे मेरे से नहीं होता, मैं वैसे ही बहुत अच्छी हूँ, दैट मीन यू आर ट्रबल मेकर। आप सिस्टम को खराब करेंगे, और याद रखिए जो इंसान सिस्टम पे नहीं चलता वो कभी ग्रो नहीं करता। वो अलग हो के नुमाया तो खड़ा हो जाएगा लेकिन वो कभी को बड़ा काम नहीं करेगा। आज चंद लोगों की ख्वाहिशों की वजह से हमारे मुल्कों में इस्लाम नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह कि हमारी अवाम जाहिल है। जिस दिन अवाम ये कुरान पढ़ गई, आप देखिए क्या खूबसूरत रास्ते बनेंगे। अल्लाह ने तोहफे में हमें इतना प्यारा कोई लीडर दे देना है कि जिसने उमर फारूक बन के पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क करवा देना है। इंशाल्लाह ऐसा होगा। आप जैसे लोग कुरान पढ़ने पर मुतमइन हो गए, ख्वाहिश कर ली, आप देखिए चेंज यहीं से शुरू हो जाएगी। असल चेंज आनी कुरान के रास्ते से है। अगर जे तुम्हारा खुदा चाहता तो तुम सबको एक उम्मत भी बना सकता था, लेकिन इसने ये इसलिए किया कि जो कुछ इसने तुम लोगों को दिया है इसमें तुम्हारी आजमाइश करें। फिर हाईलाइट कर लें, फिर मसला आ गया, आजमाइशों में है हर नेमत, आजमाइश है। पाकिस्तान भी आजमाइश है, औलाद भी आजमाइश है, दौलत भी आजमाइश है। तो क्या पता चला कि हर नेमत इम्तिहान का पर्चा, आपका हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा है। किस में पास है किस में फेल है हम खुद देखें। अल्लाह ताला हमारी आजमाइशों में हमें पूरा उतारे। करो क्या? फस्तबिकुल खैरात। फिर आ गई ना भाग दौड़, याद आ रहे पहले पारे से क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं? किसी को कुछ याद है? दूसरे पारे में क्या था? फस्तबिकुल खैरात। फिर क्या था? युसारिऊना फिल खैरात, शाबाश। और क्या था कल के पारे में? क्या था? अभी थके हुए हैं, कोई बात नहीं है। आप देखिए दीन डायनामिज्म, जल्दी करो, हरकत में बरकत। ये बस ये फस्ता बेकुल खैरात के हरकत में बरकत। लिथार्जिक ना बनो, सुस्त ना बनो, डोंट बी लेजी, उठो तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। अल्लाह ताला आपको मुझे मोटिवेशन देता है, हिम्मत बांधो, खड़े हो जाओ, कर लोगे। और जो सारे हिम्मत हार के बैठे कुछ नहीं होना, लॉस गिरफ्तारी बनाते हैं। कल एक बड़ा मजे का मजमून मिला, अगर आज पारा पूरा हो गया तो आपको तोहफे में सुनाऊंगी, जिसका मजमून क्या है कि पकौड़े रोजे का एक रुकन है, इसके बाद नहीं। बड़ा मजे का है, लेकिन अगर पारा पूरा हुआ तो सुनाऊंगी, नहीं तो नहीं। इसलिए आप भी एक्टिव होके बैठ जाए। फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जीउकुम जमीया। बस एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो भलाई में। एक दूसरे से क्यों? इसलिए कि ये दुनिया कॉम्पिटिशन है, मेरे पास वक्त थोड़ा है, मैंने नेकियां ज्यादा करनी है। आप देखिए जिस बच्चे में एनर्जी ज्यादा होती है ना, आप अगर उसको कोई काम ना दे ना तो बैठ के अपनी चीजें तोड़ना शुरू हो जाता है। बिजी करें, अपने आप को मसरूफ करें। आप खुद को कहें मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैंने अभी बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। आखिरकार तुम सबको अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है, ये भी हर बारे में आता है। इलैहि तुरजाउन सुम्मा मर्जियुकुम इलल्लाह, का तुम्हें लौटना है, फिर वो तुम्हें असल हकीकत बता देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते रहे। कुछ लोग तो इसी इख्तलाफ में जिंदगी गुजार देते हैं, ये नेकी है भी कि नहीं। ये सही काम कर भी रहे नहीं, इनका अकीदा भी ठीक है कि नहीं, ये कोई किसी के एजेंट तो नहीं, ये कुछ नहीं, और कुछ नेकियां करके जन्नतों में पहुंच जाते हैं। कई लोगों ने अल्लाह के नबी का साथ सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि ये भटके हुए हैं, ये हमारे बाप दादा के तरीकों को बुरा कहते हैं। और अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और अशरफ मुबशरा और 313 बदरी सहाबी और 1400 असहाबे खुदैबिया, वो जन्नत में जगह बना के ले गए। आपको पता है कि नबी सल्लम जब दुनिया से गए 1 लाख के करीब सहाबा थे, नाम क्यों सिर्फ 300-400 के नाम है टोटल? रहीकुम अख्तुम पढ़ लें, आलमोस्ट सारे नाम आपको मिल जाएंगे, जिसमें से 4 खुलफाए राशिदीन, फिर 10 अशरा मुबशरा, फिर उसके बाद 313 वो जिनको कहा कि आज के बाद कोई नेकी ना भी करो तो तुम्हें जन्नत, 1400 वो हैं जिनको कहा गया खुदैबिया के मुकाम पे भी जाके असहाबे बैतर रिजवान, सूरत फत में हम पढ़ेंगे। इसके बाद बाकी किधर है? 100-150 सहाबा के नाम क्यों है? क्योंकि फर्स्ट तवे कुल खैरात में भाग रहे थे। याद रखिएगा, ये जमीन, ये दुनिया मुझे आपको भूल जाएगी, सिर्फ उसको याद रखेगी जो कुछ करेगा। आगे सूरत रात में हम पढ़ेंगे, फम वम ममायन फोन्ना सुफयम कुस, जो लोगों को नफा देगा वो बचेगा। इमाम बुखारी का नाम आज क्यों है? लोगों को नफा देंगे। न्यूटन का नाम क्यों है? क्योंकि वो ग्रेविटी का लाज नफिस कर गया। तो मैंने आपने आज तक क्या किया? सिर्फ खाना पकाया, रोटी पकाई, तो ये तो कोई बड़ा काम नहीं किया। तो इसलिए अपनी जिंदगी के लिए कुछ हदफ बनाएं, ताकि अल्लाह ताला आपके मेरे लिए जाने के बाद भी कुछ सदका जारिया बना दे। पस नबी, तुम अल्लाह के नाजिल करता कानून के मुताबिक इन लोगों के मामलात का फैसला करो, इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो, होशियार रहो कि ये लोग तुमको फितने में डालकर इस हिदायत से जरा बराबर मुनहरिफ ना करने पाए जो खुदा ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है। फिर अगर ये इससे मुंह मोड़े तो जान लो कि अल्लाह ने इनके बाज़ गुनाहों की पादाश में इनको मुबतलाए मुसीबत करने का इरादा कर लिया। ये भी नोट करें, इंसान के गुनाहों की वजह से उस पर मुश्किलें आती हैं, और ये हकीकत है कि इन लोगों में से अक्सर फासिक हैं। अगर ये अल्लाह के कानून से मुंह मोड़ते हैं तो फिर क्या जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून। इस पे मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी, एक लेक्चर है इसी मसमू इसी नाम पे है, क्या जाहिलियत का फैसला चाहते हैं। मैंने खुद जिन लेक्चर्स को इंजॉय किया उनमें से एक लेक्चर ये है। कुरान पाक में 4 मुकामात पे जाहिलियत का लफ्ज आया है, उनको जोड़कर एक स्पीच की थी, ये आपको इंशाल्लाह भेजेंगे, आप सुन के देखिए तो आपको आज के दौर की जाहिलियत की चीजें नजर आएंगी। अल्लाह ताला हमारी जहालत को दूर कर दे। हालांकि जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, इनके नजदीक अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला और कौन हो सकता है? मानते हैं इस्लाम में जो अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने के रास्ते बताए, आपका दिल अब मानने लग गए कि इससे खूबसूरत कोई और तरीकाकार नहीं है।